तारा परी ने उसे बिच्छू की जान ले ली थी और उस बिच्छू की राख ओढ़कर मल्लिका और अमित के पास पहुंच चुकी थी। अमित और मल्लिका ने जैसे ही उस बिच्छू की राख की ओर देखा तो उन दोनों की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। बिच्छू की राख देखते ही काली शक्तियों का मालिक अमित गुस्से से बुरी तरह से पागल हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने खतरनाक और शक्तिशाली बिच्छू को अमन इतनी आसानी से मार सकता है। वहीं मल्लिका भी अब कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मल्लिका को बहुत बुरा लगा था। मल्लिका को लगा था कि अमन और तारा की सुहागरात से पहले ही वो बिच्छू तारा परी को डस लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उल्टा वो बिच्छू खुद राख बन चुका था। अमित के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमन इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि उसने मेरे इस खतरनाक बिच्छू को भी मार डाला था। अमित सोच सोचकर पागल हुए जा रहा था, जबकि उस बिच्छू की जान तो तारा परी ने ली थी। अमित को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा भी नहीं था। अमित अब पूरी तरह से बौखला गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सब कुछ हारता जा रहा था, क्योंकि उसके सारे प्लान सब फेल होता जा रहा था। उसने तो सोचा था तारा और अमन के मिलने से पहले पहले वो बिच्छू तारा परी की जान ले लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब क्योंकि वो बिच्छू खुद मर चुका था, अमित गुस्से से इधर उधर टहलने लगा था। मल्लिका को भी उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मल्लिका ने अपना गुस्सा अमित के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। वेल, अब तारा और अमन का मिलन तो हो चुका था। अमित को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था। अब अमित के पास केवल एक ही रास्ता था कि वो या तो खुद अमन से सीधे सीधे युद्ध करे और तिलिस्मी पत्थर उसे हासिल कर ले, क्योंकि अमन का बच्चा पैदा होने से पहले पहले अमित को हर हाल में वो तिलिस्मी पत्थर हासिल करना होगा। अगर काली शक्तियों का मालिक अमित अमन का बच्चा पैदा होने से पहले पहले वो पत्थर हासिल नहीं कर पाया तो काली शक्तियों का उसे पृथ्वी पर से वजूद ही मिट जाएगा। अमित को इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा हो चुका था। वहीं मल्लिका ने जब अमित को इतने गुस्से में देखा तो उसने सोचा, अमित का इस तरह से गुस्सा होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने गुस्से में कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है। मल्लिका अब किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मल्लिका को पता था अगर अमित इसी तरह से गुस्से में रहा तो ये कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत ज़रूर कर देगा, जिसका खामियाजा बाद में मल्लिका को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मल्लिका ने अमित का गुस्सा शांत करने की सोची थी। सो मल्लिका अमित के पास गई और उसके बालों में हाथ फेरती हुई बड़े ही प्यार से बोली थी, मालिक, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, लेकिन मालिक, अगर आप गुस्से में कोई भी फैसला लेंगे तो वो सही नहीं होगा। इस वक्त आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। मल्लिका की बात सुनकर अमित और गुस्से से भर गया था और उसने मल्लिका को बालों से पकड़ लिया और उसे अपने से दूर धकेल दिया। मल्लिका खुद को संभाल नहीं पाई थी और वो दूर जा गिरी थी। मल्लिका की आंखों में गुस्से के मारे खून उतर आया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वो चुपचाप गिरी रही थी। तब अमित, काली शक्तियों का मालिक अमित, मल्लिका के सामने जा खड़ा हुआ और बोला था, तू दो पैसे की औरत, जो औरत भी नहीं है, एक आत्मा है जो एक असल में बूढ़ी है, तू मुझे बताएगी कि मुझे कब क्या फैसला गुस्से से करना है या होशो हवास में करना है। आखिर तू है कौन जो मुझे सही गलत के बारे में समझाएगी? तेरे इस जिस्म के साथ कुछ पल तक के लिए मैं खेल क्या लिया? तुझे क्या लगा तूने मुझे अपने वश में कर लिया? तू जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा, तू जैसे नचाएगी मैं नाचूंगा। ऐसा कहकर अमन ने बड़ी ही बेदर्दी से मल्लिका के बालों को पकड़ते हुए कहा, नहीं माई जान, माई लव, नहीं, मैं अमित हूँ, काली शक्तियों पर मेरा राज है, मैं हुकूमत करता हूँ काली शक्तियों पर। तेरे जिस्म से खेलना, तुझे अपने सर पर बैठाना केवल मेरे खेल का हिस्सा था, समझी तू? अमित का भयानक रूप देखकर मल्लिका को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने कैसे ये मान लिया कि अमित उसके जिस्म की वजह से उसके कब्जे में हो गया है। तब मल्लिका आंखों में आंसू लिए अमित की ओर देखने लगी थी, लेकिन अमित पर तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वेल, अमित ने एक बार फिर मल्लिका को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा और गुस्से से वहां से निकल गया था। अमित के जाने के बाद मल्लिका धीरे धीरे उठी और उसने अपने मुंह को देखा जहां पर अमित के मारे गए निशान पड़ चुके थे। मल्लिका के सर से खून आना शुरू हो गया था। अगले ही पल मल्लिका ने कुछ पढ़कर अपने माथे को छुआ और देखते ही देखते उसका निशान गायब हो गया था। उसके बाद मल्लिका उठी और कुछ सोचती हुई एक जहरीली मुस्कान के साथ उस लाल कमरे की ओर चल पड़ी थी। मल्लिका ने अपने आप को उस लाल कमरे में लॉक कर लिया था। मल्लिका की जहरीली मुस्कान इस बात का सबूत दे रही थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा था जो मल्लिका छुपा रही थी। शायद उसे अमित के ऐसे व्यवहार का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि अमित ऐसा भी कुछ कर सकता था। मल्लिका ने अंदर कमरे में जाकर उस बेड के पास गई जिस बेड पर पिछले ही दिनों से अमित और मल्लिका एक साथ रिश्ता बना रहे थे। अचानक मल्लिका ने उस बेड के एक डोर से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उस डब्बे में थोड़ा सा पानी के ऊपर कुछ तैर रहा था। मल्लिका उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो मल्लिका को अपनी किसी जीत को लेकर खुश हो रही हो। मल्लिका उस डब्बे की ओर देखते हुए कह रही थी, मैं जानती थी काली शक्तियों के मालिक अमित, मैं जानती थी। कुत्ते की दुम को कितना ही सीधा कर ले, लेकिन वो हमेशा तिरछी ही रहती है, तो भी एक कुत्ते की दुम की तरह ही है, तो कभी भी सीधा नहीं हो सकता है।
लेकिन तू ये नहीं जानता मेरा नाम भी मलिका है। मलिका, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। वहीं दूसरी ओर तारापरी ने वो वाइट रंग का लहंगा पहन लिया था जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। एक तो पति से मिलन के बाद का ग्लो उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। वलमन अभी तक वॉशरूम में ही घुसा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी मॉम उसके कमरे में ना हो। न जाने क्यों अमन को थोड़ा सा असहज लग रहा था अपनी मॉम के सामने जाने में। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे शर्मा रही थी। तारापरी पूरे बनाव श्रृंगार के साथ तैयार हो चुकी थी और अभी वो अमन का इंतजार कर ही रही थी कि तभी अचानक तारापरी की आंखें बंद होने लगी थी। तारापरी को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसे फिर ख्याल आया कि शायद उसे कोई ना कोई विजुअल दिखने वाला है। यही सोचकर तारापरी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तारापरी अपनी आंखें बंद करके विजुअल देखने की कोशिश करने लगी थी लेकिन उसे केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था और अंधेरे के बीच में हल्का हल्का निकलता धुआं दिखाई दे रहा था। तारापरी को इसका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया था कि आखिर ये सब क्या है। वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अमन बाहर आ गया था और अचानक बाथरूम से बाहर आते ही सबसे पहले उसकी नजर सफेद लहंगे में सजी हुई तारापरी पर पड़ी थी। तारापरी को देखते ही अमन अपनी पलकें झपकने भूल गया था। तारापरी आंखें बंद किए हुए खड़ी हुई थी। तारापरी को ऐसी हालत में देखकर अमन की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। अमन धीरे धीरे तौलिया बेड पर फेंकता हुआ तारापरी के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसे बस तारापरी के लाल सुर्ख होंठ दिखाई दे रहे थे। अमन ने ज्यादा देर ना करते हुए आंखें बंद किए हुए तारापरी के होठों को चूम लिया।
तारापरी ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली थी तो वो जो विजुअल देख रही थी वो अधूरा रह गया था। उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से अमन को अपने सामने देखकर तारापरी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। तारापरी अमन की ओर देखने लगी थी। तभी तारापरी को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर अमन का दिल जोरों से धक 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 करने लगा था। तभी अमन की नज़र एक बार फिर तारापरी के गुलाबी होठों पर आकर ठहर गई थी और उसको अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगा था। इससे पहले कि अमन अपने होठ तारापरी के होठों पर रखता, उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि करिश्मा की खड़ी हुई थी। करिश्मा जी के आने के बाद अमन अपने कपड़े पहनने लगा था और जबकि तारापरी करिश्मा जी को झुककर ग्रीट करने लगी थी, तब करिश्मा जी ने तारापरी को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया था और बोली, बेटा इतने अमन तैयार हो, इतने आप मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ जरूरी बातें समझा देता हूँ। तारापरी ने हाँ में सर हिलाया और एक उछड़ती सी नज़र अमन पर डालती हुई वो करिश्मा जी के साथ बाहर चली गई। वहीं अमन जल्दी जल्दी से तैयार होने लगा था। उसे बस रात का इंतजार था क्योंकि तारापरी को देखकर अमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमन को अपनी हालत देखकर काफी अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे वो एक ही रात में तारा के इतने करीब आ सकता है। वेल, क्योंकि अब अमन के अंदर मान की भी आत्मा थी तो अमन और मान के कॉम्बिनेशन से एक अलग ही अमन तैयार हो चुका था जो ना तो पूरी तरह से अमन था और ना ही पूरी तरह से मान। वेल, जब से अमन ने तारापरी को उसे व्हाइट लहंगे में खूबना श्रृंगार के साथ देखा था उसका गला सूखने लगा था। उसे तारापरी की जिस्म तलब बहुत बुरी तरह से महसूस होने लगी थी। अपन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि क्यों वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आखिर क्यों वो तारा के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ सकता था। आखिर तारा एक मामूली इंसानी लड़की ही तो थी और जबकि अमन एक जिन था, आगे जिन्नातों का होने वाला महाराज था। उसका इस तरह से किसी एक लड़की के पीछे पड़ना या उसे लड़की को अपनी कमजोरी बनाना यह अमन के लिए सही नहीं था। वेल, अपनी सोच को झटक कर अमन जल्दी से तैयार होने लगा और तारापरी और अपनी मॉम करिश्मा जी की तलाश में नीचे की ओर जाने लगा था। अमन ने देखा तारा और करिश्मा पूरे घर में कहीं नहीं है तो अमन को थोड़ा सा अजीब लगा। वेल, उसके बाद उसने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया था, मॉम मॉम मॉम।